श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, गौर प्रेमानंदी नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाद्देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आसुरान विशदासुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन् उद्दीपयन् देवगणाश्च विष्णुः दैवेन नागेन्द्रमबोधरूपः उपार्यगेन्द्रं गिरिराडिवान्यः आक्राम्य हस्तेन सहस्रबाहुः तस्थौ दिवि ब्रह्म भवेन्द्रमुख्यैः अभीष्टवद्भिः सुमनोऽभिवृष्टः तथा इसके साथ ही असुरान असुरों में आविशद प्रवेश किए आसुरेण रूपेण आसुर रूप से तेषां उन असुरों का बल वीर्यम बल और उत्साह ईरयन बढ़ाते हुए उद्दीपयन उद्दीप्त करते हुए देवगणान देवगणों में च और विष्णु सर्वत्र प्रविष्ट दैवेना दैव रूप से नागेन्द्रम सर्पराज वासुकी में अबोध रूपः निद्रा के रूप में उपरी मंदर पर्वत के ऊपर अगेंद्राम पर्वतराज मंदर को गिरिराट पर्वतों में श्रेष्ठ इवा जैसा। अन्यहा एक दूसरे पर्वत के रूप में, अक्रम्या आक्रमित करके पकड़ करके, हस्तेना हाथ से, सहस्र बाहु सहस्रों बाहुओं को जो प्रकट किए थे, तस्थव खड़े हो गए, दिवी आकाश में, ब्रह्म भवेंद्र मुख्य ही, ब्रह्मा शिव और इंद्र जिनमें प्रधान है, ऐसे देवताओं के द्वारा अभिष्ट वद्भि भगवान की स्तुति की जा रही थी। सुमनो विवृष्ट और पुष्पों की वर्षा हो रही थी। जब समुद्र मंथन चालू हुआ तब कुछ ही देर में ऐसा लगा कि पर्वत बिखर जाएगा। इतना जोर से खींचा जा रहा था कि लगता था कि पत्थर के पर्वत की चट्टाने बिखर करके गिर जाएंगी। जोर का झटका लग रहा था और थोड़े ही देर में मथते मथते देवता और दैत्य पस्त होने लगे, उनकी शक्ति भी जाने लगी। बहुत विशाल पर्वत पर चलाना इतना आसान काम नहीं था। जिसको उठाकर लाने में ही लोग मर गए थे तो उसको लगातार कई घंटा कई दिन चलाना बहुत कठिन था। और वह भी दूध के भीतर चलाना था, दूध अवरोध पैदा कर रहा था। एक बार में मान लीजिए लोग ऐसे चलाते होंगे तो दूध के कई हजार जोजन तक तरंगें उठती होंगी उस समुद्र में, विशाल समुद्र तो खींचने में परिश्रम पड़ रहा था। एक छोटा सा मटका होता है और उसमें दही मथने पर पसीना आ जाता है। मां यशोदा की कथा हम लोग पढ़ते हैं दसम स्कंध में, जिस दिन श्री कृष्ण ने भांग किया था, फोड़ा था बर्तन, उस दिन मां यशोदा को पसीने आ गए थे शरीर पर, परिश्रम बिंदु, जबकि वह दीपावली का दिन था, कोई गर्मी का दिन नहीं था, ठंडा था, और परिश्रम पड़ता था खींचने में। रज्जू पकड़कर आकर्षित कर रही थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वीनम वक्त्रम विगल मालती है। स्वीनम वक्त्रम, मां यशोदा के मुख पर श्वेत बिंदु उभर आए थे परिश्रम के जल, साधारण खींच रही थी। छोटा सा बर्तन था और उसमें कृष्ण के लिए माखन निकालना था और बेचने के लिए, और लोगों के लिए नहीं, थोड़ा ही निकालना था, तो इतना परिश्रम पड़ गया। और विशाल समुद्र में एक विशाल पर्वत को चलाना है तो कितना परिश्रम पड़ रहा होगा। तुरंत देवताओं की दैत्यों की शक्ति जवाब देने लगी और ऐसा लगा कि अब वासुकी तो मर ही जाएंगे खींचने में और पर्वत बिखर जाएगा। तब भगवान अपना विष्णु नाम अब यहां सार्थक कर रहे हैं, सब में प्रवेश किए। यदि भगवान वहां नहीं रहे होते तो मथानी ही नहीं आ सकता था और मंथन कहां से होता। वो सब में प्रवेश कर रहे हैं। यह भगवान की एक लीला है समुद्र मंथन में। यद्यपि देवताओं को, दैत्यों को या वासुकी जी को इस बात का पता नहीं था कि उनके भीतर भगवान प्रवेश कर रहे हैं, तो तथा असुरान आविशद आसुरेण रूपेण, असुरों में भगवान ने प्रवेश किया आसुर रूप से, यहाँ आसुर रूप का अर्थ है कि जैसा उनका स्वभाव था, जैसा पराक्रम था, जैसा बल था, उसी रूप में। और आसुर का एक अर्थ किया जाता है राजस भाव से, रजोगुण के रूप में प्रवेश किया उनके भीतर, उनके रज भाव को प्रेरित किया। कहने का आशय यह था कि असुरों में जैसा उत्साह रहता है कि अब हम कमाएंगे, खाएंगे, अमर हो जाएंगे, बाद में देवताओं को जीत लेंगे, ये सब मनोबल बढ़ा रहे थे भगवान, और इसके साथ उनके शरीर में बल के रूप में प्रविष्ट हुए। तो एक एक असुर का बल पहले के अपेक्षा लाखों गुना अधिक बढ़ गया भगवान के प्रवेश करने से। तो असुरों में आसुर रूप से प्रवेश किए और देवताओं में दैव रूप से, देवताओं का बल बढ़ा रहे थे, देवताओं के शरीर में प्रवेश करके, मन में प्रवेश करके उनका सात्विक भाव बढ़ा रहे थे। देवताओं में सात्विक भाव बढ़ा रहे थे भगवान, इसका अर्थ यह है कि वे लोग जैसे पहले थे वैसा ही उत्साह बढ़ा। हम लोग भगवान के भक्त हैं, हम लोग मेहनत करेंगे, सुख से रहेंगे, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार विश्व का पालन कर सकेंगे, सब ठीक करेंगे, ये इरादा हो रहा था। किसी कार्य के समय मनुष्य के कुछ संकल्प उठते हैं और वे संकल्प ही उसको कार्य में प्रवृत्त करते हैं, चलाते हैं। असुर जो होते हैं वे केवल इसी फेर में रहते हैं कि वो ऐसे कमाना है, ऐसे खाना है, यही अजर अमर होना है, ये करना है, वो करना है, आज इस शत्रु को मार दिया, कल उसको मारना है, इतना कमाऊंगा, ये प्राप्त करूंगा, हमारे सामने कौन है, ये है, वो है, ऐसे। भगवान ने गीता में आसुरी संपदा का वर्णन किया। तो असुरों में आसुर रूप से प्रवेश किए और देवताओं में दैव रूप से, सात्विक रूप से। तेषां बल वीर्यं ईरयन, उनका बल बढ़ाते हुए और वीर्यं, वीर्यं का अर्थ है काम करने का उत्साह, काम करने का मनोबल, और इसके साथ शारीरिक बल, इंद्रिय बल, सब कुछ बढ़ा रहे। ईरयन, ईरयन का अर्थ है प्रेरयन, प्रेरित करते हुए, बढ़ाते हुए प्रवेश किए। नागेंद्र में कैसे प्रवेश किए? नाग कहते हैं सर्प को, और इंद्र का अर्थ है श्रेष्ठ स्वामी, नागेंद्र, सर्पराज वासुकी, वासुकी में अबोध रूप भगवान उनके भीतर प्रवेश किए कि उनको सुला दिए, उनको पूरा समुद्र मंथन हो गया, तब तक पता ही नहीं चला कि शरीर में कहां दर्द हुआ, कहां कटा, कहां छटा, पता ही नहीं चला। अगर पता होता तो एक दो घंटा में ही मर गए होते। दर्द का अनुभव होता तो वे अब उसमें अमृत पीने के लिए पहले ही मर नहीं जाते। जैसे कहीं ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं तो कुछ सुंघा देते हैं, व्यक्ति बेहोश हो जाता है, इसके बाद शरीर को काटते हैं तो उसे पीड़ा का अनुभव नहीं हो पाता। इस तरह भगवान ने अबोध के रूप में प्रवेश किया, और समझ लेना चाहिए कि उनके शरीर में और शक्ति दिया, नहीं तो टूट गया होता है। सर्प का शरीर कोई मजबूत नहीं होता है, अगर उसमें मोटी मोटी हड्डियां होती तो उसको रस्सी की तरह लपेटा नहीं जा सकता था, वो टूटने का डर था। तो उसमें दृढ़ता के रूप में भगवान ने प्रवेश किया और अबोध के रूप में, कितना भी बल होता लेकिन वासुकी को उस दर्द का अनुभव होता तो काम नहीं कर सकते। अबोध, न बोध, अबोध रूप। ऊपर यज्ञेन्द्रम गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाह। और भगवान ने यह भी देखा कि यह मंदराचल पर्वत एक तो बिखर जाएगा बार बार घुमाने से, टूट जाएंगी इसकी चट्टानें, गिर जाएगा, अथवा कच्छप जी कहीं इधर उधर पीठ किए तो ढाई से गिर जाएगा पानी में छलक कर। सब बैलेंस बनाने के लिए ऊपर से अन्य गिरिराट इव एक अन्य दूसरे सुमेरु पर्वत के समान इस पर्वत से भी बड़ा हो करके और हजारों बाहों को प्रकट करके भगवान एक बाह से उस पर्वत के शिखर को पकड़कर खड़े थे, बैठे नहीं थे, काम चल रहा था ना। तो पर्वत के घाटी में अपने पैर को टिका करके और पकड़े थे, हंसते ना एके ना, ये एक जातिवाचक शब्द है, कई हाथ से पकड़े थे पर्वत को, तब जाकर को टीका रहा, बैलेंस बनाए थे नीचे कच्छप रूप से और ऊपर से एक विशाल पर्वत के रूप में। पर्वत का आकार नहीं था ऊपर, भगवान का आकार था, लेकिन विशाल स्वरूप आविष्कृत करके और उसको पकड़े थे खड़े होकर। उस समय बहुत से देवगण आकाश में अपना विमान ले ले करके भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सुमनो भिवृष्ट, अभिवृष्ट का अर्थ है अभितः, पूर्णतः, सब वर्षे सब समय वर्षा हो रही थी और खूब पुष्प वर्षा हो रही थी। स्वर्ग में पुष्पों की कमी नहीं है, इस पृथ्वी पर पुष्प खरीदना पड़ता है, स्वर्ग में तो केवल पुष्प ही पुष्प भरा पड़ा है, वहां खेत फंसा नहीं है और फसल उत्पन्न करने के लिए, गेहूं चावल और कंटक, केवल पुष्प बाट का भरा हुआ है। तो देवता पुष्प की वर्षा कर रहे थे। कौन कौन मुख्य थे? ब्रह्म भवेंद्र मुख्य, ब्रह्म भाव और इंद्र ये मुख्य प्रधान थे। यहां एक प्रश्न बनता है कि क्या मंथन छोड़ करके इंद्रदेव ऊपर चले गए थे? शिव जी और ब्रह्मा जी को तो माना जा सकता है कि वे मंथन में नहीं थे, लेकिन इंद्र क्या ये काम छोड़ करके जाकर के फूल बरसा रहे थे? नहीं, भगवान इंद्र में यह शक्ति है, वो ये कहीं साथ काय व्यूह प्रकट कर सकते हैं, समुद्र मंथन भी कर रहे थे और दूसरे रूप से जाकर भगवान पर फूल बरसा रहे थे। यही तो भक्त का स्वभाव, और भगवान ब्रह्मा जी शिव जी सब फूल बरसाने में मुख्य थे। अभिष्टवद भी भगवान की कीर्ति गा रहे थे उस समय की, विविध गुण गा रहे थे, बाजे बज रहे थे, बहुत सुंदर दृश्य था समुद्र मंथन का, ऊपर से देवतागण जय जयकार कर रहे थे, इधर लगे हुए थे और असुरों का उत्साह बढ़ा ही था, बड़े उत्साह से यह कार्य चल रहा था, भगवान साथ में थे, चारों ओर तो भगवान है, कच्छप के रूप में भगवान है, ऊपर विशाल स्वरूप प्रकट करके खड़े थे और असुरों में प्रवेश किए हैं, दैत्यों में प्रवेश किए हैं, उस मंदराचल में प्रवेश किए हैं, देवताओं में, सर्प में, सब में तो वही प्रवेश किए हैं, इसीलिए यहां विष्णु शब्द सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, सही नाम है विष्णु, जो एक ही समय सब जगह विशति प्रवेश कर सकता है, रह है उसको विष्णु कहते हैं, सब में प्रवेश। जैसे चित्रों में बनाया जाता है कि असुर विकट रूप के होते हैं, यह बात नहीं है, वे लोग भी देवताओं के समान ही सुंदर होते हैं, कोई कोई कुरूप होता है और गोरे गोरे बहुत अच्छे शरीर वाले होते हैं, लेकिन वासुकी नाग के द्वारा वे सब दग्ध कर दिए, काले हो गए, जल रहे थे, बहुत परिश्रम पड़ रहा था, लेकिन अब फिर भी ये नहीं कहते थे कि अब बदल लो, हम पूछ के तरफ रहेंगे, अब कैसे कहते? यद्यपि शायद वे अगर ये कहते भगवान से कि हम अब पूछ के तरफ रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, तो भगवान कहते ठीक है भाई, बदल लिया जाए, लेकिन अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए आवे, मर जाएंगे मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं, कुछ भी हो चलो। इस झूठे झूठी प्रतिष्ठा में पड़े हुए बहुत दुख सह रहे थे, सबका वर्चस्व आहत हो गया, दग्ध काले पड़ गए सब। कौन कौन थे? मुख्य का नाम यहां लिखा जा रहा है, जो लोग बिल्कुल फ्रंट पर थे मुख के पास, पौलोम, काले, बली, इलवल आदि। पौलों में एक का नाम नहीं है, जातिवाचक नाम है, पुलोमा के पुत्र गण, ये बड़े उत्साह में थे, और काली के पुत्र गण, काले उनको कहते हैं। पौलोम और काले और दो व्यक्तिवाचक नाम दे रहे हैं, वली और इलवल, बली महाराज और इलवल, ये लोग बहुत अपने को बड़ा समझ रहे थे और इसीलिए बिल्कुल निकट में थे, दिखा रहे थे कि हम बड़े हीरो हैं, हम बहुत वीर हैं, सांप के मुख के पास बिल्कुल है, क्या होगा। हीरो बनने में ही सारी हालत खराब हो गई इनकी, मेहनत कर रहे हैं। वासुकी नाग के मुख से विष निकल रहा था और विष बाहर निकलते ही वो आग के रूप में जल रहा था, तो आग और धुआं दो का वर्णन है, और हजारों मुख से धुआं आग, हजारों आंख से आग धुआं, हजारों नासिका से धुआं और आग, झुलस गए, काले पड़ गए, तप्त हो रहे थे। अच्छा, वह आग कितने दूर में फैल रहे थे वासुकी नाग के मुख से, नासिका से और नेत्र से, और धुआं कितना दूर में जा रहा था, इसका वर्णन करते हैं कि देवता तक फीके हो गए थे। यद्यपि बहुत कम पहुंच थी वहां तक धुआं और आग की, लेकिन वे लोग भी फीके हो गए, तो दैत्यों की क्या हालत हो रही थी आप समझ सकते हैं सहज, क्योंकि देवता तो बिल्कुल दूसरे साइड में थे, दूसरे साइड में, और दैत्य बिल्कुल दूसरे साइड में, पर देवताओं पर भी प्रभाव पड़ा वासुकी के मुखाग्नि का, धुआं का। देवांश्च तत्स्वास शिखा हत प्रभान धूम्राम बरावश्रग बर कंचुकानन। देवांश्च, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देवता भी, जैसे वे फीके हो गए थे, जल गए थे, तो देवता भी हुए। तत्स्वास शिखा हत प्रभान, वासुकी के सांस की शिखा से, शिखा का अर्थ है अंतिम भाग, सांस की शिखा से, इतनी भयावह विस्मय सांस थी कि उसके अंतिम पकड़ में देवताओं का कपड़ा, उनकी माला और कंचुक, कंचुक का जैकेट, देवताओं का जैकेट कपड़ा जो कुछ भी था और गहना सब धूमिल हो गया, परंतु देवताओं के शरीर पर उसका कोई खास असर नहीं हुआ, केवल गहना कपड़ा माला मुरझा गई। और इस कारण से कि इन पर भगवान की कृपा थी, समभ्य वर्षन भगवत बसा घना, घन भगवत बस है, भगवान की आज्ञा से बादल वर्षा कर रहे थे देवताओं के ऊपर, बहुत छोटी छोटी वर्षा, सीकर बरसा रहे थे, एक तो छाया थी देवताओं के ऊपर और बादल धीरे धीरे वर्षा कर रहे थे, और हवा चल रही थी क्षीर समुद्र में, दूध को छू छू करके ठंडी ठंडी हवा देवताओं पर चल रही थी, तो ये वायु और घन दोनों भगवान के वश में। तो कार्य काल में देवता बड़े आराम से मथ रहे थे, कोई कष्ट नहीं हुआ, यही हुआ कि कपड़ा लता सब धूमिल हो गया, गहना धूमिल हो गया, तो इससे क्या, कि तो ठीक है काम चल रहा है तो कुछ तो प्रभाव होना चाहिए। वह बात है जैसे मान लीजिए दो पक्षों में युद्ध हो रहा है और एक पक्ष मार दिया गया, वध कर दिया गया उसका, और दूसरा पक्ष केवल थोड़ा सा तलवार या बाण की चोट सहा लेकिन विजयी हुआ, तो देवता इस तरह से थे, कुछ कष्ट उन्हें भी हुआ लेकिन वे अधिकतर आराम से मथ रहे थे। भगवत बसा घना, भगवान उनकी सहायता कर रहे थे। और बबू समुद्रो, समुद्रो उपगूढ़ वायु,
समुद्र की उर्मियों का आलिंगन करके, समुद्र की लहरों का आलिंगन करके वायु चल रहा था, देवताओं पर सीधे वायु चल रहा था, और इससे यह ऐसा लगता है कि दैत्यों पर हवा नहीं लग रही थी, बिल्कुल बंद थी हवा उधर, थोड़ी भी ठंडी हवा नहीं, तो पसीने से लथपथ थे और वासुकी के विषाग्नि से जल रहे थे, बहुत कष्ट हुआ। भगवान ने पहले ही कह दिया कि क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्य जुयम फलग्रह, दैत्यों को केवल क्लेश हाथ लगेगा, अमृत तुम लोग पाओगे। भगवान विषम नहीं है, वास्तव में सम है, लेकिन एक पक्ष भगवान की शरण में जा रहा है और दूसरा अपना अपनी योजना बना रहा है कि हम ऐसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कैसे सुखी हो सकता है। देवता तो जब हार गए, दुखी हो गए, तो अपने गुरु ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने उनको भगवान के पास भेजा, वो ले गए, तो भगवान तो ऐसे कृपालु हैं जो उनकी शरण में आता है उसकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। जैसे भगवान विषम नहीं है, अगर दैत्य भी भगवान की शरण लेते हैं तो क्या भगवान सहायता नहीं किए हैं। दैत्यों में सिरमौर हैं बलि महाराज और प्रहलाद महाराज, ये भगवान की शरण लिए तो भगवान तो इनके भी पक्षधर हैं, पर बलि महाराज बाद में भगवान को दान करेंगे। ये छठे मनवंतर की कथा चल रही है, सातवें मनवंतर में वामन देव का अवतार होगा जो हो चुका है, हम लोग सातवें मनवंतर में चल रहे हैं। भगवान सबके प्रति सम है, लेकिन विषमता जीव के ओर से होती है। जो लोग भगवान की शरण में रहते हैं वे यह जीवन भी सुख से जीते हैं, भगवान कभी कमी नहीं होने देते हैं, भोजन, मकान या कपड़ा या प्रतिष्ठा, निरोग शरीर, भगवान सब कुछ देते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासिरर्थार्थी। कोई दुखी होकर के भगवान को पुकारते हैं तो भगवान दुख दूर करते हैं। जिज्ञासा जिन्हें तत्व को, भगवान को जानने की लालसा होती है तो वे जान जाते हैं। अर्थार्थी पैसा चाहते हैं तो भगवान पैसा भी खूब देते हैं। अर्थार्थी अर्थ के अर्थी, अर्थ का अर्थ धन, बहुत धन दिए, उतना धन कोई दे ही नहीं सकता है जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने दिया, बहुत विशाल धन दिया, अक्षय धन कई भक्तों को दिया है। और अंत में ज्ञानी, ज्ञानी का अर्थ है शुद्ध भक्त जो केवल भगवान से प्रेम करता है। ये सब सुकृति है, भगवान कहते हैं सर्वे सुकृति न उदारा सर्वे वैत, सभी उदार हैं, सुकृति है। भगवान की शरण लेना यह एक बहुत बड़ा सुकृत का सूचक है। जो व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है तो समझ लेना चाहिए कि यह पहले का पुण्यात्मा व्यक्ति है, इसके बुद्धि में विष्णु की महिमा समझ में आ गई, तो इसका चित्त शुद्ध रहा है पहले से, तब ग्रहण किया, नहीं तो भगवान की महिमा को पकड़ पाना अति कठिन है। तो दैत्य भगवान को नहीं समझ पाए, भगवान की शरण नहीं लिए, और भाग्यवान देवगण भगवान को ही सब कुछ जानते थे, भगवान की शरण में थे, इसलिए वे सुख से जी रहे थे, और देव दैत्य दुख में पड़ गए थे। आप देख रहे हैं कि परिश्रम वे लोग कितना अधिक कर रहे हैं, वैसे देखा जाए तो परिश्रम तो एक समान कर रहे थे, लेकिन क्रिया काल में कष्ट केवल हो रहा था दैत्यों को, और देवताओं को आनंद आ रहा था क्योंकि भगवान साथ में थे। वे लोग तो जस गा रहे थे, फूल बरसा रहे थे, भगवान पर सेवा कर रहे थे, तो क्रिया काल में भी आनंद का अनुभव कर रहे थे। यही है भक्ति, भक्ति में साधन काल में भी केवल आनंद ही आनंद रहता है, और साध्य में तो आनंद है ही, जब भगवान मिलेंगे तो आनंद का क्या कहना। क्रिया में भी आनंद, भगवान के पूजा में, कीर्तन में, प्रसाद खाने में दुख कहाँ है, सब जगह तो आनंद ही आनंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। देवगण इस तरह से सुखपूर्वक मथ रहे थे। मथ्यमान तथा सिंधोर देवा सुरबरु थपहि जदा सुधा न जाए तो निर्ममंथा जितः स्वयं। जब कुछ काल तक लोग मथे, मतलब कई दिन मथे, जैसे मंथन दंड बड़ा था, समुद्र मथा जा रहा था, तो वो ऐसा नहीं था कि दो चार घंटे में बस अमृत उत्पन्न होते, कई वर्ष लगा होगा। तो जब अजित ने, भगवान ने देखा, जो मन्वंतरा अवतार थे छठे, कि अब इन लोगों के मथने से सुधा उत्पन्न नहीं होगी, इसका अर्थ था कि स्पीड कम था अभी भी और जल्दी जल्दी मथा जाएगा तब जाकर के अमृत उत्पन्न होगा। तो भगवान ने देखा कि अमृत नहीं उत्पन्न हुआ तो निर्ममंथ स्वयं, देवताओं के साथ भगवान स्वयं लगे। एक भक्त हमसे पूछे कि जब पूछ पकड़ना था तो भगवान तो उस समय पकड़े थे, तो मथ तो रहे थे शुरू से ही। नहीं, केवल पकड़वाने के लिए उस समय दैत्य लोग मुख पकड़ ले, इसलिए भगवान ने जाकर के झट से मुख पकड़ा था, लिखा हुआ है इस तरह से। और इसके बाद पूछ पकड़ लिए तो पूछ पकड़ करके और छोड़ दिए, कहे ठीक है अब मत ही आप लोग। अपने भक्तों को पूछ के तरफ लगाना चाहते थे भगवान, आगे की विपत्ति को भगवान देख रहे थे कि मुख के पास जो रहेंगे उनकी क्या फजीहत होगी किस दुख में रहेंगे तो भगवान मथ नहीं रहते। अब मथना चालू किया, देखे कि जदा सुधा न जाए, तो जब सुधा उत्पन्न नहीं हुई तब स्वयं अजित मथना चालू किए, भगवान लगे देवताओं में बिल्कुल आगे, और भगवान मथ रहे हैं। तो उस छवि का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी एक दीर्घ छंद में कर रहे हैं। मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युन मूर्धनि भ्राजत बिलुलित कचः श्रग्धरो रक्त नेत्रः जैत्रैर्दोर्भिर् जगदभयदयी स्तंद शूकं गृहीत्वा मथनं मथना प्रतिगिरिरिव शोभताथो धृताद्रिही। भगवान मथ रहे हैं तो भगवान के सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी करते हैं। मेघ श्याम, उस सोने के पर्वत के पास भगवान खड़े हैं वासुकी नाग को पकड़ करके। कैसे पकड़े हैं? जैत्रैर दोर्भिः, दोह का अर्थ होता है भुजाएं, भगवान की अनेक भुजाएं हैं, कम से कम चार भुजा, चारों भुजाओं से वे पकड़े हैं सर्प को। दंदसूकम गृहीत्वा, दंदसूक को, सांप को पकड़े हैं। और भगवान की भुजाओं की विशेषता बता रहे हैं जैत्रैः। जैत्रैः का अर्थ है कि जो भुजाएं सदा ही विजय प्राप्त करती हैं, भगवान कभी भी कहीं भी नहीं पराजित हुए हैं। बल्कि जो कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान की भुजाएं उसको अभय दान देती हैं, रक्षा करती हैं, इसलिए भगवान के भुजाओं को जैत्र कहा जाता है। जैत्र का अर्थ जेता, सर्वदा विजयी, कभी परास्त नहीं हुआ, सभी युद्ध में सब समय भक्तों को अभय दान देने वाला। तो ऐसी अपनी भुजाओं से भगवान दंदसूक को, सर्प को पकड़े हुए थे, और सर्प द्वारा पर्वत को पकड़े हुए थे, एक प्रकाश मंदराचल को। तो मंदराचल के सामने भगवान खड़े थे, तो भगवान तो एक सांवले पर्वत जैसे लग रहे थे, उस समय अपने को विशाल रूप में प्रकट किए थे। पर्वत को पकड़ना है, सांप को पकड़ना है, तो बड़ा स्वरूप बना करके पकड़ना होगा, इसलिए प्रति गिरी रिव अशोभत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान एक प्रतिद्वंदी पर्वत जैसा शोभित हो रहे थे। तो वह सोने का पीत पर्वत था मंदराचल, तो भगवान नीलमणि नीलाचल होकर के खड़े थे, इसको प्रतिगिरी कहते। एक पीला पर्वत है और एक बिल्कुल श्याम पर्वत, और जैसे चमचम चमक रहा था मंदराचल, तो उसी तरह से भगवान भी चमक रहे थे, लेकिन ये सांवले थे और बाहों से सांप पकड़े हुए। मेघ श्याम, मेघ के समान श्याम है, कनक परिधि ही, और परिधि का अर्थ वस्त्र, जिसको मनुष्य परिधान करे, धारण करे, उसको परिधि कहते, कनक परिधि। सोने के समान पीत वर्ण के वस्त्र थे भगवान के, इस तरह खड़े थे। और कर्ण विद्युत विद्युन, कानों में ऐसा लग रहा था कि स्थिर विद्युत चमक रहा है, स्थिर विद्युत। आकाश में विद्युत की चमक आप सभी देखे होंगे, लेकिन एक सेकेंड भी वह विद्युत नहीं ठहर पाता। तो भगवान के जो बड़े बड़े कुंडल थे उनके शरीर के साइज के अनुसार वैसे चमक रहे थे, लगता था कि स्थिर विद्युत, अचल विद्युत। और उस कारण से भी भगवान का शरीर और चमक रहा था। कर्ण विद्युत विद्युत, मूर्धनी कच विलुलित कच, भ्राजत विलुलित कच मूर्धनी, भगवान के सिर पर घुघराले काले केश लहरा रहे थे। विलुलित, विलुलित, लुलित का अर्थ होता है टेढ़ा किया हुआ। तो भगवान किसी सैलून में अपने केश को टेढ़ा नहीं बनाए हैं, कुंचित नहीं किए हैं, भगवान के केश स्वाभाविक ही विलुलित हैं, कुंचित। कुंचित का अर्थ होता है घुंघराल, टेढ़े टेढ़े। भगवान के केश ऐसे सीधे सुअर जैसे नहीं है खड़ा, घुंघराले हैं, और बहुत सूक्ष्म। सूक्ष्म का अर्थ फाइन, बहुत पतले पतले केश हैं भगवान के, और घना बिल्कुल सिर पर। इस संसार में तो मनुष्यों को बाद में केश प्राप्त होता है, जब जन्म लेते हैं तो उसमें केश नहीं रहता है, सिर में कोई केश नहीं रहता, और मरने से पहले बूढ़ा होने पर भी केश लगभग विदा ही हो जाते, ऐसा है ना, देखा गया। जैसे जन्मे थे वैसे मर जाते हैं, बिना केश के जन्मे थे और मरने से पहले भी लगभग केश खत्म ही हो जाते। एक कवि ने उत्प्रेक्षा किया है कि किसी के केश क्यों सफेद हो जाते हैं, क्यों दांत टूट जाते हैं, तो कहा है कि दांतों का स्वभाव है उज्जवल रहना, श्वेत वर्ण का रहना, और केशों का स्वभाव है काला रहना। लेकिन दांतों ने देखा कि ये केश हमारे स्वभाव को ग्रहण कर रहे हैं, ये उजले होते जा रहे, तब हम मुख में नहीं रहेंगे, ये रंज होकर के मुख छोड़ करके चले जाते हैं, बत्तीसो दांत। इसका अर्थ ये है कि उधर केश उजले हुए और इधर दांत टूटने चालू। ये मनुष्य शरीर तो यही है, लेकिन भगवान अनादि काल के हैं और उनके केश बिल्कुल काले घुंघराले स्निग्ध हैं। उनके उत्पन्न किए हुए कितने मनुष्य और देवता मरेंगे करोड़ों बार अरबों बार, लेकिन भगवान ज्यों के त्यों नित्य नूतन। उनके केशों का वर्णन करें, मूर्धनी भ्राजत विलुलित कच, कच का अर्थ केश, विलुलित कच, बहुत सुंदर केश। केश तो भगवान शिव को भी है, लेकिन वो उसमें बरगद का दूध लगा करके हमेशा जटा बनाए रखते हैं। अब भगवान शिव के केश में देखेंगे तो केवल राख और वट वृक्ष का दूध, यद्यपि वो जटा भी बांध लेते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन भगवान इस तरह के नहीं। भगवान के केश बिल्कुल सजाए हुए, संवारे हुए, पिच्छल होते हैं। पिच्छल का अर्थ होता है कि हाथ से छूने पर छलक जाते हैं, स्निग्ध होते हैं। उसमें तेल नहीं लगाना पड़ता है, भगवान के केश में तेल नहीं लगाना पड़ता है, और बाहरी सुगंधित द्रव पेंट सेंट नहीं लगाते हैं भगवान। तो मनुष्य का शरीर ऐसा अधम है कि उसमें कुछ पेंट लगाओ, कुछ करो, तब जाकर के देखने लायक होता है। ये भगवान का सब कुछ दिव्य है स्वरूप से। सुखदेव गोस्वामी भगवान के वस्त्र का वर्णन किए, कुंडल का और उनके केशों का, श्रगधर, और बहुत ही सुंदर माला लगाए थे। श्रग का अर्थ माला, श्रगधर रक्त नेत्र, भगवान की आंखों में अरुणाई थी, कृपा और स्नेह का सूचक। भगवान के आंखों में लालिमा, और इस तरह अपने अभयद भुजाओं द्वारा वासुकी जी को पकड़कर और भगवान मथने लगे दैत्यों और देवताओं के साथ। उस समय बहुत शोभित हो रहे थे। मथना धृताद्री, ऐसे अन्वय होगा। मथना मंथन करने लगे, वासुकी द्वारा धृत अद्री पर्वत को पकड़े थे। सब जगह तो भगवान ही प्रवेश किए थे, लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा थी कि मैं भी मथूं अलग से, ये विहार करना चाहते थे। भगवान कभी इतना काम परिश्रम करते नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। करोड़ों अरबों नौकर भगवान के दास हैं, वे लोग सब कार्य करते रहते हैं। भगवान इस तरह मथने लगे। निर्माथ्यमानाद उदधे रभुद विषम महोल बड़म हाल हलाव मग्रत। जब भगवान ने मथना चालू किया तो कुछ ही क्षण में, अब इतना वेग से वो मथा जा रहा था समुद्र की, तत्काल ही हलाहल विष निकला। ये पहला रत्न है 14 रत्नों में, विद्वानों ने इसको भी रत्न कहा है, 14 रत्न में इसकी गिनती की है। कहने तक सबसे पहले जब समुद्र मथा गया तो उस तो दूध था, तो दूध का जो कलमश था, जो गंदगी थी, वह पहले प्रकट हुई, जल कलमश कहा गया। और हलाहल विष, हलाहल को तीन तरह से कहते हैं लोग, हलाहल या हलाहल, हलाहल और हलाहल और हाल हल, इस तरह से कहते हैं। ये तीनों शब्द जो है इस बात का सूचक है कि जिसको सूंघते ही और जिसके स्पर्श से आने वाली वायु का स्पर्श करते ही व्यक्ति मर सकता है, उसको हलाहल कर। वल का अर्थ होता है वेग, चाल, जैसे विह्वल कोई हो जाता है। विह्वल का अर्थ है कि जिसका वल विगत हो गया, जिसमें चंचलता नहीं रहे, स्तंभित हो गया। तो हलाहल जहर की हवा जहां लगती है तो व्यक्ति वहीं पर स्तंभित होकर छटपटा करके गिर कर मर जाता है, इसलिए इसको हलाहल कहते। तो विष निकला सबसे पहले, कहां निकला? व्यापी विष, समस्त समुद्र में विष फैल करके निकला, सब जगह से बहुत दूर में विष निकला, और उसका वेग बहुत बढ़ रहा था, बहुत वेग से चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में बढ़ रहा था, ऐसा हलाहल जहर निकला। निर्मथ मानर उदधे रभुद विषम महोल बणम, महा उल्बण, उल्बण का अर्थ है भयावह, भयावह का अर्थ तत्काल ही मार देने वाला, तत्काल ही मृत्यु का कारण था वो विष। महोल बणम हाल हलावम अग्रत, अग्रता का अर्थ सर्वप्रथम, सबसे पहले हलाहल विष निकला, और उस विष से सबसे पहले तो उस समुद्र में जितने भी मकर, तिमी, तिमिंगल, द्वीप, सर्प आदि थे, वे सब व्याकुल हो गए, सब जलने लगे। वे तो जलने ही लगे, अब देवता और दानव वे लोग भी अब विष की ज्वाला से लगा कि मर जाएंगे। जब ही ये लोग विष देखे तेव ही मथना छोड़ करके और चले भाग। वासुकी वहीं पड़े थे, तो वासुकी को विष क्या कर सकता था, इनको तो कुछ करने वाला नहीं था, वैसे ही पड़े थे। और भगवान कच्छप देव अपनी पीठ पर पर्वत को लेकर के शांत वहीं थे, और सब भाग चले। एक प्रश्न होता है कि भगवान जब वहीं पर थे, अजित भगवान, तो देवता लोग उनकी शरण क्यों नहीं लिए, क्यों भाग गए? वास्तव में भगवान ने ही कुछ ऐसा नाटक किया। वे चाहते थे अपने सखा, अपने दास भगवान शिव को जश देना चाहते थे। ऐसा लिखा गया है पुराण में कि भगवान अपने भक्त रुद्र को यश देने के लिए कुछ ऐसा कहे कि अरे भागो भागो, ये तो बच नहीं सकते, शिव जी की शरण में भागो, सदा शिव की शरण में भागो। इस कारण से देवता भगवान की शरण न लेकर के कैलाश की ओर भागे, वेग से भागे, समझ गए कि अब कोई रक्षा नहीं करेगा, भगवान शिव रक्षा करेंगे। तो विष किस तरह फैल रहा था, श्रील सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन करते हैं। तदुग्र वेगम विशदिशुपर्यधो विसर्प दुस्सर्प दसह्यम प्रति भीता प्रजा दुद्रुरंग शेश्वरा अरक्षमाणा शरणम सदा शिवम। सदा शिवम शरणम भीता दद्रुवु दुद्रुवु। सदा शिव की शरण में सब देवता भागे। देवता से तात्पर्य यहां दैत्यों से भी है, दैत्य भी भागे, देवता भागे, यहां तक कि शेश्वरा ईश्वर के साथ भागे। ईश्वर का यहां अर्थ है भगवान अजित, अथवा अपने अपने गुट के लीडरों के साथ भागे, ये अर्थ स ईश्वरा। जो जो प्रधान थे सब लोग भागे, भागो 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 दौड़। कैसा विष था? तो उग्र वेगम, उग्र वेग, उग्र वेग का अर्थ है जिसका जिसकी चाल भयावह थी, बहुत वेग से चारों दिशाओं में बढ़ रहा था। जब उग्र वेग का अर्थ केवल चाल में ही तेज नहीं, उग्र का अर्थ है मार देने वाला, वध कर देने वाला। पहले उल्बण शब्द आया था महाउल्बण, और अब दे रहे हैं उग्र वेगम। दिशी दिशी ऊपरी अधा, वह विष दिशा दिशा में फैल रहा था, ऊपर भी बढ़ रहा था, नीचे भी फैल रहा था, और ऊपर अधा दिशाओं में फैल रहा था। चार विसर्पत, विसर्पत का अर्थ फैल रहा था। उत्सर्पत, उत्सर्पत का अर्थ ऊपर बढ़ रहा था, नीचे भी फैल रहा था, चारों तरफ फैल रहा था, ऊपर बढ़ रहा था। असह्यम, जिसको सह पाना असंभव था, कोई टिक नहीं सकता था उसके आगे। और अप्रति, और संसार में ऐसी कोई औषधि या कोई उपाय नहीं बनाया गया है जो हलाहल जहर की प्रतिक्रिया कर दे, उसको काउंटर कर, अप्रति, उसका प्रतिकार करने वाला कोई दूसरा औषधि नहीं। ऐसा वो विष फैलने लगा। भीता प्रजा, समुद्र मंथन में जो प्रजा लगी हुई थी, देवता और दानव, दुद्रुवु, सब भाग चले। हे अंग, हे परीक्षित महाराज, अंग कर, हे प्रिय परीक्षित, सब प्लायन कर गए, भागे। भगवान भी उनके साथ जा रहे थे। अरक्षमाणा शरणम सदाशिवम, देख ली कि कहीं कोई रक्षा नहीं है, कोई नहीं बचाएगा, केवल भगवान शिव बचा सकते हैं, तो वे लोग शिव जी की शरण में भाग। भागते भागते, अब भागने में ये मत समझिए कि मनुष्यों जैसा वे लोग पैदल भाग रहे थे। बहुत वेग से विष चल रहा था, तो वे लोग भी वेग से भागे, जो उनकी योग शक्ति थी, दैत्यों की या देवताओं की, सब लोग भागे योग शक्ति से। वो लोग पृथ्वी पर तो पैर भी नहीं रखते हैं, देवता सदा आकाश में रहते हैं, बहुत जोर लगाते हैं तब कभी पृथ्वी पर पैर रखते, नहीं तो नहीं रख सकते। उनके लिए स्वाभाविक स्थान है आकाश, और हम लोग तो आकाश में ऊपर उठेंगे तो धड़ाम से गिर जाएंगे। हम लोगों का स्वाभाविक स्थान यह पृथ्वी है। यह अनुभूत विषय है। आप समुद्र में यात्रा कीजिए, बहुत देर तक जी उब जाता है कि कब पृथ्वी पर चलेंगे, कब पृथ्वी पर चलेंगे। और वायुयान में आकाश में भी जी उब जाता है कि कब पृथ्वी पर चलेंगे, क्योंकि पृथ्वी ही हम लोगों के लिए स्वाभाविक स्थान है। यहां के धूल में बैठे रहते हैं वो अच्छा लगता है। नभचर बन करके जी उब जाता है, और जलचर तो बन ही नहीं पाएंगे। थलचर हम लोग हैं, स्थल पर रह सकते हैं। तो देवता नभचर, तो वे लोग अपने योग शक्ति से, अपनी फूर्ति से जैसे तैसे भगवान शिव के शरण में भागे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान शिव पार्वती जी के साथ बैठे हैं, और वहां पर बहुत से मुनियों को कृष्ण तत्व पर प्रवचन सुना रहे थे, ब्रह्म तत्व, भगवान के रूप गुण लीला आदि की कथा कह रहे थे। भगवान शिव का केवल यही कार्य है, जप करते रहते हैं, कथा करते रहते हैं। और नारद जी, सनकादिक आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर के भगवान शिव से सुनते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान शिव किसी दिन अब कथा बंद करके ऑफिस में गए होंगे, कोई दूसरा काम होगा, नहीं, लगातार अनादि काल से उनका यही कार्य है। और भगवान शिव भजन का आदर्श दिखाते हैं, वो घर द्वार नहीं बांधे हैं, वो एक वृक्ष के नीचे रहते हैं। हैं जगत के ईश्वर महादेव, लेकिन अपने लिए कुटिया भी नहीं बनाए हैं, जबकि इनके चेला, इनके दास रावण आदि सोना का भवन बना लिए, सोने की लंका बना लिए थे, लेकिन भगवान शिव अपने लिए एक फूस की झोपड़ी भी नहीं बनाए, कुटिया भी नहीं बनाए। और किस कार्य में रहते हैं? सर्वदा राम राम रटते रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। त्यागियों में भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ। इतना त्याग है, घर नहीं बनाए हैं और वस्त्र तक नहीं पहनते। डिजाइन और कटिंग की बात तो छोड़ दीजिए, कौपीन तक नहीं पहनते। कभी मन में आया तो बाघंबर लपेट लेते हैं, और नहीं तो ऐसे ही नंग धड़ंग घूमते हैं। यह त्याग, विश्व का ईश्वर होकर के और संसार को त्यागा है भगवान शिव ने। पर भगवान के कथा कीर्तन में सदा रत रहते हैं। बट वृक्ष है, उसी के नीचे रहते हैं। कई बार पार्वती जी कहती रहती हैं कि आप दूसरों को वरदान देते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे भवन बना लेते हैं आपके भक्त लोग, और आप अपने लिए क्यों नहीं बना रहे? लेकिन वे ध्यान देते ही नहीं है, कुछ नहीं करते। तो वहां गए देवगण, तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव बैठे हुए हैं पार्वती जी के साथ, और ब्रह्म तत्व पर विचार हो रहा है। ब्रह्म का अर्थ है भगवान कृष्ण, परब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भवान, पुरुषम, शाश्वतम, दिव्यम, आदि देवम, अजम देव। यही है महान पुरुषों का कार्य। भगवान के रूप गुण लीला पर भी मुग्ध रहते हैं, और चाहे दो चार व्यक्ति, चाहे हजार व्यक्ति, अथवा अकेले में, वे भगवान की विशेषताओं पर ही मुग्ध रहते हैं, उसी का चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं। तो भगवान शिव इसके आदर्श। और ब्रह्मा जी के जी में तो बहुत भारी मैनेजमेंट है, फिर भी वे भी कथा में ही लगे रहते हैं। कभी कभी कुछ ध्यान दे देते हैं, नहीं तो सदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंद का भजन करते हैं। यह भी बात श्रीमद् भागवत में स्थान स्थान पर लिखी गई है कि जब ब्रह्मा जी के पास कोई बैठा तो देखा कि ब्रह्मा जी भजन सुन रहे हैं। एक बार महाराज रैवत गए थे ब्रह्मा जी से पूछने के लिए कि हमारी पुत्री के लिए आपने कौन सा वर निश्चित किया, क्योंकि विवाह सब ब्रह्मा जी का लिखा हुआ होता है, मनुष्य के करने से नहीं होता, ऊपर से ब्रह्मा जी लिख देते हैं कि इस कन्या के साथ इस वर का विवाह। तो महाराज रेवत डायरेक्ट चले गए पूछने के लिए ब्रह्मलोक। तो वहां पर देखे कि ब्रह्मा जी भगवान के विषय में संगीत सुन रहे हैं, गंधर्व वहां लिखा है, गंधर्व का अर्थ है गान बजान सुन रहे। उसमें कुछ देर हो गई, बाद में ब्रह्मा जी उठे तो पूछे आप कहां से आए, कैसे आए, क्या इरादा है। मैंने बताया कि मैं द्वारका से आया हूं, अनर्थ देश से आया हूं, और अपनी पुत्री को लेकर भी गए थे। मैं इसके लिए पूछने आया हूं कि कौन सा वर आपने निश्चित किया है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके मन में भी तो कोई वर होगा, तो हाँ पृथ्वी पर मैं कुछ देखा हूं, लेकिन किसके साथ आपने लिखा है वो बता दीजिए तो मैं जाकर उसी से करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जिनके विषय में सोच करके आए थे, तो यहां आने में और यहां रुकने में उधर पृथ्वी पर कई लाख वर्ष बीत गया, और हे राजन जिन लोगों को आपने अपने चित्त में सोचा था सब काल के कवल में चले गए, कोई नहीं है, यहां तक कि उनके पुत्र पौत्र का भी नाम नहीं सुना जा रहा है। आप जल्दी जाइए पृथ्वी पर और भगवान का अवतार होने वाला है और उनका नाम होगा श्री बलराम, तो उनके साथ आप अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए, और यह संबंध मैं नहीं लिखा हूं, यह भगवान की इच्छा है, आप जाइए जल्दी जाइए। तब वे फिर आए तो वहां इस बात का पता चलता है कि ब्रह्मा जी भजन में बैठे हुए थे, भगवान शिव भजन में बैठे रहते, देवगण गए तवे भजन में बैठे थे, कथा में बैठे थे। वहां जाकर के देवगण स्तुति करने लगे, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि न शरणापन्न त्रैलोक दहनाद विशाप, हे देवताओं के भी देव, देवताओं के आराध्य, हे महादेव, हे समस्त जीवों के आत्मा और हे समस्त जीवों के पालक, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तीनों लोकों को जलाने वाला यह विष फैल रहा है, इस विष से हमारी रक्षा कीजिए। मानो भगवान शिव ने कहा कि और की शरण क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग। तब कहते हैं त्वमेक सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्ष, आप ही इस जगत के ईश्वर हैं, आप ही किसी को कर्म बंधन में बांध देते हैं या मुक्त करते हैं, इसीलिए जितने भी कुशल लोग हैं, जितने भी विद्वान हैं, समझदार हैं, वे आपके चरण कमल की आराधना करते हैं। ध्यान रखना चाहिए, यहां श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने कहा है कि भगवान विष्णु के गुणों का ही वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि सदा शिव है। सदा शिव का अर्थ है भगवान विष्णु, भगवान विष्णु ही कभी कभी शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं किसी किसी समय में, तो इसलिए जो भी गुण वर्णन किया जा रहा है ये भगवान विष्णु का गुण है, और चूंकि विष्णु ही सदा शिव है इसलिए कोई भेद नहीं। इस तरह वैष्णव लोग इस प्रसंग को लेते हैं। बहुत लंबी स्तुति है, मैं उस स्तुति में नहीं जाऊंगा। अंत में वे लोग कहते हैं कि हम पर जब जब विपत्ति पड़ी है तब तब आपने हमारा उबार किया है, रक्षा किया है, जैसे काम को आपने जलाया, नष्ट किया अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से, दक्ष प्रजापति के यज्ञ को ध्वंस किया आपने, और त्रिपुर को मारा, काल को डांटा। काल का अर्थ जब मार्कंडे जी को काल सता रहा था तो उसको उन्होंने दंडित किया था। तो जैसे अन्य भी जीव द्रोहियों को आपने दंड दिया मारा, तो हे प्रभु यह विष हमें दग्ध कर रहा है, इसका भी कोई उपाय कीजिए। क्योंकि आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई स्तुति की बात नहीं है कि आपने दक्ष यज्ञ को नष्ट किया, काम को दंड दिया या त्रिपुर का वध किया, यह किया, ये कोई स्तुति की बात नहीं है। जिनके तीसरे नेत्र की ज्वाला से ही प्रलय काल में सारा जगत जलकर भस्म हो जाता है, उनके लिए इस विष को नष्ट कर देना और ये कर देना, ये कौन सा बड़ा आश्चर्य है? जो संसार ज्वाला को नष्ट कर सकता है, उसके लिए विष ज्वाला को नष्ट करना कौन बड़ी बात है? ये आपकी स्तुति नहीं है। स्वनेत्र विस्फुल लिंग शिखया भसितम न वेद। जब प्रलय काल आता है तो भगवान शिव उस समय अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और बाकी समय में कभी नहीं खोलते हैं। तीसरा नेत्र खोलते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड जल कर राख हो जाता है और भगवान शिव को पता भी नहीं चलता है कब राख हो गए, कब भस्म हो गए। भसितम न वेद, कब भसित हुआ, कब जल गया, ये पता भी नहीं चलता। तीनों लोक बताइए, ऐसा देवता जिसके एक दृष्टि से देखने से सारा जगत जल जाए, कितनी बड़ी शक्ति है। तो आप कि यह अनंत शक्ति है, आप अद्भुत हैं, और जो लोग आपके व्यवहार पर हंसते हैं वे अति मूर्ख हैं। वास्तव देवगण कह रहे हैं भगवान शिव पर कुछ लोग हंसते हैं, क्या कहते हैं कि देखो ये तपस्वी हैं और तपस्वी होकर के भी पत्नी रखे हैं। कभी कभी कहते हैं अरे जब विवाह किए हो, मैरिज किए हो, तो खूब अच्छे से घर द्वार बांध करके रहो। कोई कहेगा ना, कोई विवाह करने के पहले ही लड़का सोचने लगता है कि हमारा घर होना चाहिए, रेगुलर इनकम होना चाहिए, ये पत्नी को लाएंगे तो ऐसे रखेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे। और ये ऐसे विवाह किए हैं कि घर पर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है स्वागत के लिए, बस वट वृक्ष के नीचे जाओ, हरि कथा करो, इसके बाद पानी भी नहीं जाओ। ऐसे पानी तो गंगा जी ही इनके जटा में रहती हैं, पानी की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी जो एक शिष्टाचार है, सदाचार है जगत में, व्यवहार कुशलता शिव जी में नहीं है, इसलिए मूर्ख लोग हंसते हैं। देखो ये क्या है, न कपड़ा पहनते हैं न कुछ, जगत में इतना सोना चांदी भरा पड़ा है और जगत के यही ईश्वर हैं, लेकिन सोने का गहना नहीं पहनते हैं, अस्थि का गहना पहनते, हड्डी का गहना पहनते, मुंडमाल लगाते, और इनको कोई भी अब कस्तूरी चंदन केसर से मतलब नहीं है, केवल राख घसते हैं पूरे देह, और वो भी चीता की राख, श्मशान की राख लपेटते। तो जो लोग बुद्धू हैं एक नंबर के, जिनको कोई ब्रेन नहीं है, वे लोग कभी कभी ये हंसते हैं शिव जी पर कि ये क्या बुद्धि है, और उनको कहते हैं कि ये बम बम बाबा है, मतलब ये बुद्धू है, इनको बुद्धि नहीं है, और इनसे कोई भी असुर ठग लेता है। कोई जाकर कहे कि हमको ये दीजिए तो दे देते हैं, हमको ये दीजिए दे देते हो, और अपने घर बनाने की और आराम से रहने की बुद्धि इनको नहीं। इन सब के पीछे या हम इस समय मर रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए, यह सुनकर भगवान शिव तुरंत द्रवित हो गए। यही तो ईश्वरताई है, समर्थ पुरुष की यही शोभा है। सारा संसार दुख से जल रहा था और भगवान शिव इसको सुनकर द्रवित हो गए, करुणा से हृदय भर गया, और अब वे प्रजा को विष से मुक्त करने का सोच लिए। तो विष से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने सोचा कि विष को कहां रखा जाए। एक तो विष इतना बड़ा था कि वो कोई कंटेनर में और बोतल में अटने वाला नहीं था, पूरा समुद्र ही विष हो गया था, कहां रखा जाए, और कहीं भी उसको एक जगह करके फेंका जाता है तो सब कई जीव मर जाएंगे। तो भगवान शिव ने सोचा कि इसे मैं पीऊंगा, और पीने पर भी भगवान शिव ने विचार किया कि हमारे भीतर भी तो अनंत कोटि जीव हैं, उनके भीतर ही तो ब्रह्मांड है सब कुछ, तो ये सब जीव मर जाएंगे। तो उन्होंने ये विचार कर लिया कि मैं इसको कंठ में धारण करूंगा, भीतर नहीं जाने दूंगा और बाहर बमन भी नहीं करूंगा। यह देखिए सामर्थ, हम लोग एक बूंद पानी नहीं रख सकते हैं कंठ में, तुरंत सरक जाएगा, खांसी आएगी, या तो भीतर करेंगे चाहे बाहर करेंगे। और भगवान शिव समुद्र व्यापी हलाहल विष को कंठ में पचाने की शक्ति रखते हैं। यही है ईश्वर का कार्य। उन्होंने सोचा, लेकिन इतना बड़ा निर्णय लेने के पहले उन्होंने सोचा कि जब मैं विष पीने चलूंगा तो मेरी पत्नी मेरे प्रभाव को न जान करके कहीं रोकने न लगे बीच में कि नहीं 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 नहीं, हमें विश्वास नहीं है, हमारा सुहाग अचल रहे, आप ऐसा काम मत कीजिए, आप मत पीजिए। हो सकता है बेचारी डर जाए कि नहीं नहीं, जिस विष से सारा संसार जल रहा है, देवता त्राही त्राही कर रहे हैं, और उस विष को किसी का पति लेकर के पीने जा रहा हो तो बेचारी स्त्री तो घबरा जाएगी, अरे बाप रे, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन पार्वती जी आखिर भगवान शिव की पत्नी थी, तो भगवान शिव के प्रभाव को पूरा पूरा जानती थी। फिर भी भगवान शिव उनकी अनुमति लेने के लिए उनसे बात करने लगे। एक टीकाकार कहते हैं कि गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि कोई विशेष निर्णय ले तो अपनी पत्नी से जरूर पूछे। तो भगवान शिव अब ये एक ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रहे हैं, एक बहुत भयावह कार्य करने जा रहे हैं, तो अपनी पत्नी से पूछना जरूरी था, इसलिए वे सबसे पहले पूछने लगे, कहने लगे। शिव उवाच, अहो बत भवाने तत् प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोद मथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम् उपस्थितम्। भगवान शिव ने कहा, अहो बत भवानी, अहो बत, अहो का अर्थ हे और बत का अर्थ बहुत दुख की बात। हे भवानी, भवानी शब्द से का अर्थ है हे भाव की पत्नी, मतलब हे मेरी पत्नी, ये अर्थ। तो माता पार्वती की योग्यता, उनका ज्ञान प्रकट कर रहे हैं, तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि है क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। हे भवानी अर्थात हे भाव की पत्नी, हे मेरी पत्नी, देखो कितने दुख की बात है। प्रजानम वैशसम पश्य, प्रजा का दुख देखो, बेचारे सभी सुख से जीना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन अकस्मात सब पर प्राण संकट आ गया। इनके दुख को जरा विचार करो। भगवान शिव ने सोचा कि इनके दुख को बताऊंगा तब कहेंगे कि हाँ हाँ ठीक है आप पी जाइए, उसको साहस होगा। तो प्रजा के दुख को दिखा रहे हैं, देखो इनकी क्या हालत हो गई। बेचारे समुद्र मंथन कर रहे थे कि अमृत पिएंगे, अजर अमर होंगे, और आज ही इतना बड़ा संकट आ गया, इन पर जरा विचार करो। क्षीरोद मथनोद भूता, तो मां पार्वती ने कहा ये संकट कहां से आ गया। क्षीरोद मथनोद भूता, क्षीर समुद्र के मथने से उद्भूता, उद्भूत हुआ है, उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ, तो विषाद। ये लोग क्षीर समुद्र मथ रहे थे और उससे भयावह विष निकला है, उससे सब पर प्राण संकट आ गया। कर्म कर रहे थे जीने के लिए, अमर होने के लिए, तब तक बीच में इतना बड़ा संकट आ गया। संकट प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, संकट अपने आप आ जाते हैं इस संसार में। विष उत्पन्न करने के लिए समुद्र नहीं मथा जा रहा था, लेकिन सबसे पहला फल विष ही हुआ। यही संसार की दशा है, मनुष्य सुख के लिए काम करता है, बीच में दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, आ जाता है। तो ये संसार में चलता है, कोई भगवान शिव के कहने का आशय है कि ये बेचारे कोई गलती नहीं कर रहे थे, कोई पाप नहीं कर रहे थे कि दुख आ गया, बेचारे समुद्र मथ रहे थे। कितना बड़ा काम है समुद्र मथना, ये लोग क्षीर समुद्र मथ रहे थे, उसी से इतना भयावह विष निकला और ये लोग दुखी हो गए। तब आपका क्या विचार है, ये लोग दुखी हैं तो? तब भगवान शिव कहते हैं, आशम प्राण परिशुनम विधेयम अभयम ही मे, मे का अर्थ है माया, माया आशम प्राण परिशुनम अभयम विधेयम, मैं इनको अभय करूंगा, मैं इनका दुख दूर करूंगा, इनका भय दूर करूंगा। एतावान ही प्रभोर अर्थो जद दीन परिपालनो। हे प्रिय, यदि कोई समर्थ व्यक्ति है इस जगत में तो उसके लिए कार्य क्या है, अर्थ क्या है, उसे क्या करना चाहिए? दीन परिपालनम, दीन दुखी जीवों का पालन करना चाहिए। यदि समर्थ है तो समर्थ पुरुष के जीवन की सार्थकता इसी में है कि दीन दुखी का वो पालन करे। बहुत सुंदर सिद्धांत भगवान शिव बोल रहे हैं। बहुत से पुरुष इस संसार में होते हैं जो दीन होते हैं, दीन जीव, चाहे पुरुष मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और भी कई प्रकार के दीन होते हैं। दीन का अर्थ होता है जिसकी सामर्थ्य नहीं होती है सुख से जीने की, न खाने के लिए उसके पास रहता है, न कमाने के लिए, घर द्वार के लिए, न निरोग रहता है। दीन अर्थ, दीन का अर्थ होता है पंगु, जो लाचार व्यक्ति। इस संसार में जितने भी दीन हैं तो उन पर दया रखना उन लोगों का काम है जो समर्थ है, जो प्रभु है। भगवान शिव यहां कह रहे हैं, तो मैं इस जगत में एक प्रभु हूं, मैं समर्थ हूं, मैं इनका दुख दूर कर सकता हूं, इसलिए मैं इनका दुख दूर करूंगा। भगवान शिव के इस आचरण से सबको सीखना चाहिए। किसी के पास कोई धन है, बुद्धि है, विद्या है, तो वास्तव में वह दुखियों का दुख दूर करने के लिए है, दूसरों का पालन करने के लिए है। अन्यथा कोई धनी आदमी कितना खाएगा, जितना गरीब आदमी खाता है उतना ही तो खाएगा, पहनेगा, बाकी सब कुछ तो छोड़ करके जाना है, बिल्कुल खाली हाथ जाना पड़ेगा। और मरने के बाद पुत्र भले लिखे कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन हो सकता है कि पिताजी नरक में गए होंगे, लिखता है स्वर्गवास हो गए, लिखे लेकिन स्वर्ग गए तो स्वर्ग का कोई फोन नंबर और एड्रेस भी दे करके नहीं जाते हैं कि वहां उनका धन भेज दिया जाएगा। यदि बेटा कोशिश करे कि पिताजी बहुत मेहनत किए थे, सवेरे से शाम तक कमाने में लगे रहते थे, इतनी संपत्ति छोड़ गए हैं, कुछ तो भेजना चाहिए, कहां गए हैं, तो पहले तो स्थान का ही पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट कहां गए हैं वे। जब पिताजी मर जाते हैं तो बच्चे लिखते हैं निमंत्रण में कि हमारे पिता का स्वर्गवास हो गया है। आज तक एक भी बेटा ये नहीं लिखा कि हमारे पिताजी नरक में चले गए हैं, आइए कुछ उद्धार के लिए उपाय किया जाए। और वास्तव में नहीं लिखना चाहिए, ये कभी नहीं लिखना चाहिए बेटा को कि हमारे पिताजी नरक में चले गए। साधु भाव में लिखना चाहिए, ठीक है स्वर्ग में चले गए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पिताजी कहां चले जाएंगे पता ही नहीं है, और धन जो कुछ भी है, घर द्वार सब कुछ यही रह जाता है। बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो यहां की संपत्ति को दीन दुखियों के लिए प्रयुक्त करता है, देता है, अपनी सुविधा को कम करके और दूसरे को सुख सुविधा देता है, वास्तव में वही धन्य पुरुष है, वही धन्य। वो जितना देता है उसका लाखों गुना उसको परलोक में मिलता है, यह भगवान की व्यवस्था है। यहां का दिया हुआ कई गुना परलोक में मिलता है। तो भगवान शिव यह संदेश दे रहे हैं एक प्रकार से जगत को कि एतावान प्रभुरर्थ, समर्थ पुरुष का इतना ही कार्य है, बस यही प्रयोजन है, जब दीन परिपालनम, दीन का पालन करे। पालन करे, भगवान उसके कार्य को देखते। और खास करके आज के युग में दो चीज से पालन बहुत आवश्यक है, एक तो धन से और दूसरा ज्ञान से। अगर इसे दवाई आदि तो धन से ही मिल जाता है, इसलिए वो औषधि मेडिसिन सब धन के अंदर ही आ गया। धन से दिनों का पालन किया जा सकता है और ज्ञान से। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत गीता देकर भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस गीता का प्रचार करो, ज्ञान दो, लोग अज्ञानी हैं, ज्ञान देने से उनका दुख दूर होगा, मेरा भक्त बनेंगे, मेरा भक्त बनने से दुख दूर हो जाता है। तो इस ज्ञान का प्रसार करना यह बहुत भारी उपकार है, इसके समान कोई उपकार नहीं। और उपकार है भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, वस्त्रहीन को वस्त्र देना, जिसके पास मकान नहीं है उसको आश्रय देना, मकान देना, रोगी को दवा देना, ये सब उपकार के कार्य हैं। और प्रत्येक समर्थ व्यक्ति को चाहिए कि वो करे, भगवान के प्रचार में धन को खर्च करे और दीन दुखी जनता की सेवा में खर्च करे। संस्कृत के एक कवि ने कहा है कि अब हम किससे मांगे, अब जनता किससे मांगेगी। भगवान विष्णु भी लगता है कि दान देते देते थक गए। दानियों में सबसे बड़े दानी हैं भगवान, तो कभी कहता है कि भगवान भी लगता है कि थक गए, कि गरीब हो गए लक्ष्मीपति होकर के, वो भी जाकर समुद्र में कहीं छिप गए। भगवान समुद्र में रहते हैं, अपने ससुराल चले गए, तो ससुराल जो जाएगा वो कहां से दान करेगा। जब ससुर का भी धन लेगा तो उसके अंदर लोभ बना हुआ है। तो कभी कहता है कि भगवान विष्णु ससुराल चले गए और सांप पर सो करके दिखा रहे हैं कि हमारे पास पलंग भी नहीं है, इसलिए हमसे कोई मत मांगो, हमें अब हमारा ओढ़ना बिछौना भी नहीं है, अब हम कुछ नहीं है, अपने ससुराल में गुजारा कर रहे हैं। तो सबसे बड़े दानी थे वे चले गए क्षीर समुद्र में, छिपा लिए। उसके बाद दानी भगवान शिव हैं, तो ये तो बिल्कुल कपड़ा ही खोल दिए कि हमारे पास अब जब कपड़ा भी नहीं है तो हमसे कोई क्या मांगेगा। और ये भी अपने पर्वत में कहीं छिप करके इधर उधर पेड़ के नीचे रहने लगे, तो कोई क्या मांगेगा। तो शिव जी भी अब देने के मूड में नहीं है और भगवान भी ऐसे हैं। और सुनते हैं कि ब्रह्मा जी भी एक बहुत बड़े दानी हैं, समय समय पर देते हैं, तो ब्रह्मा जी खुद ही कमंडल उठा लिए हैं, अब क्या किया जाए। ब्रह्मा जी कमंडल लेते हैं हाथ में, तो कमंडल वाले क्या दान करेंगे। तो ब्रह्मा जी स्वयं ही अब कमंडल दिखा रहे हैं, तो उनसे तो मांगने की हिम्मत ही नहीं हो रही। और एक दाता है सर्प पे बड़े बड़े नाग, तो वे लोग जाकर पाताल में छिप गए। और दूसरे एक दानी बहुत बड़े सुने गए बलि महाराज, तो वो भी सूतल लोग भाग कर चले गए। अब किससे मांगा जाए। भगवान ने देखा कि दानियों से यह पृथ्वी खाली हो गई है, तो उन्होंने व्यापारी वर्ग बनाया कि ये लोग दान करेंगे। भगवान विष्णु का और शिव जी का काम अब ये लोग करेंगे। भगवान ने यही सोच करके कलयुग में व्यापारी वर्ग को बनाया। और वास्तव में देखा जाए तो जो भी दिन परिपालन होता है या धर्म का काम होता है व्यापारी वर्ग करता है, ये संदेह नहीं है। कवि ने कहा है संस्कृत की कविता में, लेकिन ये तो विनोद की बात है, परंतु यह बात सत्य है कि व्यापारियों ने संसार में धर्म की रक्षा किया, धन दे करके, सुविधा दे करके। जैसे आप यहीं पर विचार कीजिए, इतना सुंदर पंडाल बना हुआ है, इतना विशाल, किसका बनाया हुआ है। यही धन का सच्चा यूज किया गया, तो भगवान के कथा के लिए, भगवान का संदेश प्रसारित करने के लिए धन का यह उपयोग है। इसमें धन लगा है तो धन तो धनी का ही होगा, भक्तगण इसमें आयोजक का काम किए, संयोजक का काम किए, परंतु वास्तव में जो धन खर्च हुआ होगा वो धनी लोगों का खर्च हुआ होगा। यही कार्य है, ये करना ही चाहिए। ये दीन परिपालन, ज्ञान दान देने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, भक्ति देने के लिए। इसको कहते हैं प्रभु समर्थ। जब तक धन है तब तक लुटाना चाहिए। हिंदी के कवि ने कहा है कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यदि नौका में पानी बढ़ जाए तो उस समय बुद्धिमानी क्या है कि दोनों हाथ से नौका के पानी को उछलते हैं, नदी में फेंकते हैं, तब नौका बचेगी। और नहीं, पानी भरता जाएगा तो नौका भी डूबेगी और सवार भी डूबकर मरेंगे। इसलिए नौका में अगर पानी बढ़े तो दोनों हाथ से उलीचना चाहिए, और घर में पैसा बढ़े, धन बढ़े तो उसको भी दोनों हाथ से उलीचना चाहिए, नहीं तो धन ही डुबा देगा। वो धन अनेक प्रकार के दुर्व्यसन में, पाप में फंसा देगा, उसके कारण नरक में जाना पड़ता है। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि दोनों हाथ से दान किया जाए। दोनों हाथ से दान करने का मतलब है उदार भाव से दान करना, आनंद से। बहुत वर्ष पहले, लगभग 126 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए हैं हमारे देश में, बनारस में थे वे, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े दानी थे। और लोगों ने एक कहना चालू किया कि दानी या तो राजा हरिश्चंद थे या ये हरिश्चंद जी हैं, उनका नाम हरिश्चंद था। तो कहते हैं विद्वान लोग कि मरने से पहले, मरते समय तक वे केवल कफन के लिए पैसा बचाए थे और बाकी सारा पैसा दान कर दिए, और कुछ नहीं था उनके पास। और वो अपने एक मित्र को कहे कि इतना पैसा मैं छोड़ दिया हूं, इतना पैसा मतलब 8 आना 1 रुपया ऐसा, उस समय छोड़ दिया हूं मेरे कफन के लिए, बाकी कोई धन बाकी नहीं था ना किसी का, उन पर चाहता था वे सब लुटा दिए थे। उनका नाम है, अमर है दानियों में। उत्तर भारत में लोग जो जानते हैं, जो हिंदी भाषा बोलते हैं, और हिंदी की बहुत उन्नति किया उन्होंने। इस तरह से अनेक दानी हुए हैं जिसके पास ज्ञान है, सामर्थ्य है, धन है, बल है, तो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरे के हित में करना चाहिए, यही बुद्धिमानी। तो भगवान शिव ये सिद्धांत कह करके बात कह रहे हैं, और कहते हैं प्राण स्वयं प्राणी न पांति साधव क्षण भंग रही बद्ध वैरेश भूतेश मोहिते स्वात्माया। साधव स्वयं प्राण अपि प्राणिन पांति, यदि अपना देह भी देना पड़े तो अपना देह त्याग करके, अपना प्राण त्याग करके भी साधुजन दूसरे की रक्षा करते हैं, दूसरे का हित करते हैं। तो हमको तो अभी केवल 20 पीना है, इसे प्राण तो जाने वाला नहीं है, मैं तो समर्थ हूं, क्यों नहीं करूंगा। साधु तो वे हैं जो अपना शरीर भी दे सकते हैं समय पड़ने पर, जैसे दधीची या सिबी महाराज अपना शरीर दे दिए अपने शरणागत जीव का पालन करने के लिए। यहां तक कि वैर करने वाले का भी पालन करते हैं साधु, और इसी को वास्तव में उपकार कहते हैं। जो हमारे उपकार को माने और बदले में उपकार करे तो उसका उपकार करना है उपकार नहीं है, अपने अपकारी का उपकार करना असली उपकार है। सब प्रकार से जो हमारा अहित कर रहा है उसका भी उपकार करना यही उपकार है, और यही साधुओं का आचरण, सज्जन पुरुषों का यही व्यवहार होता है। तो जीव आपस में बैर बांधे हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, लेकिन साधु जन अपना शरीर दे करके भी उनका उपकार करते हैं।
और जब दूसरे पर कृपा की जाती है, किसी दूसरे प्राणी का उबार किया जाता है, तो जानती हो वह क्यों, उसे क्या लाभ है? पुंसह कृपयते भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि। जब जीवों पर कृपा की जाती है तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु को, कृष्ण को प्रसन्न करना, यही लाभ है जीवन का। वास्तव में भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति इस संसार में दुखी जीवों की सेवा करता है, उनका उद्धार करता है, उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। आप देखिए, किसी परिवार में दो चार बच्चे हों और एक बच्चा, एक लड़का दूसरे लड़का को सहारा दे तो पिता प्रसन्न होता है। पिता चाहता है कि हमारे सभी पुत्र मिल करके रहें और समर्थ पुत्र असमर्थ का पालन करें। तो भगवान की भी यही इच्छा है। कृपयतः पुंसः, जो व्यक्ति कृपालु होता है, दया करता है दूसरे जीवों पर, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इस बात से निश्चित यह निष्कर्ष निकलता है कि जो लोग पशु हत्या करते हैं, मांस खाते हैं, पशुओं को सताते हैं, उन पर तो कभी भी भगवान की कृपा नहीं होगी। उनके लिए तो नरक का द्वार सदा के लिए खुला हुआ है। ये मनुष्यों में भी, मनुष्य को भी जो सताते हैं किसी भी तरह से, या किसी भी प्राणी को, तो वे भगवान की कृपा के भाजन नहीं हो सकते। कृपयतः पुंसः सर्वात्मा हरि प्रियते। दयालु पुरुषों के प्रति भगवान प्रसन्न होते और प्रीते हरौ भगवती प्रियेहम सचराचर। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान की प्रीति से ही मैं प्रसन्न होता हूं, मैं उसी व्यक्ति पर प्रसन्न होता हूं जिस व्यक्ति पर भगवान प्रसन्न होते हैं। अहम प्रिय कर, मैं प्रसन्न होता हूं। कोई भी व्यक्ति यदि भगवान को प्रसन्न करने चाहता है और शिव जी को भी प्रसन्न करने चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह दीन दुखी जीवों की सेवा करे। सेवा का तात्पर्य है कि उनका दुख दूर करे। तो भगवान के प्रसन्न होने पर ही मैं प्रसन्न होता हूं, और भगवान के प्रसन्न हो जाने पर चर अचर सभी जीव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तस्माद इदम गरम भुंजे प्रजानम स्वस्ति रस्तु में, इसलिए इदम गरम भुंजे, मैं यह विष खाऊंगा, भुंजे मैं इसको भोगूंगा, मैं खाऊंगा, हमारी प्रजा का कल्याण हो। भगवान शिव कहते हैं मैं प्रजानम स्वस्ति रस्तु, सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, सबका मैं प्रभु हूं, मैं इनको इस तरह से दुखी नहीं देख सकता, मैं अब विष खाने जा रहा हूं इनको बचाने के लिए। कितनी कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। कहते हैं मैं प्रजानाम, मेरी संतान है, सब जल रहे हैं, दुखी हैं, तो मैं विष पीने जा रहा हूं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं आमंत्र भगवान भवानी विश्व भावन तद विषम जगधुमारे भे प्रभाव ज्ञान मोदत। इस प्रकार अपनी पत्नी से आमंत्रणा करके विश्व भावन भगवान शिव उस विष को पीने का उद्योग करने लगे, पीने के लिए तैयार हो गए। तो प्रश्न होता है कि पार्वती जी ने क्या कहा? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रभाव अज्ञा, अपने पति के प्रभाव को ज्ञाता है, अपने पति के प्रभाव को जानती थी। जब संसार ताप का शमन करते हैं जीवों का, तो ये विष इनका क्या करेगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो महान है, अपने पति के प्रभाव को जानती है, तो इसीलिए अन्व मोदत। उन्होंने कहा ठीक है, आप पीजिए, आप खाइए विष। ऐसा नहीं कि दूसरे स्त्री की तरह नहीं 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 पता नहीं क्या हो जाएगा, आप ऐसा दुस्साहस मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। भगवान के प्रभाव को जानती हैं माता पार्वती जी, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है पीजिए। तो जब माता पार्वती ने अनुमोदन किया तो वहीं पर ब्रह्मा जी भी थे,
इंद्र थे और भगवान अजित भी पहुंचे थे वहां। विष पीने के बाद सबने प्रशंसा किया हो, आगे बात आएगी। किस प्रकार विष पिया भगवान शिव ने? ततः करतली कृत्य व्यापी हाला हलम विषम अभक्षण महादेव कृपया भूत भावन। बारंबार विश्व भावना भूत भावना शब्द आ रहा है। भूत का अर्थ जीव। भगवान शिव समस्त जीवों के पालक हैं, कृपा करते हैं, जन्म देते हैं, पालते हैं, इसलिए भूत भावना या विश्व भावना, विश्व रक्षक। व्यापी हाला हलम विषम, समुद्र व्यापी कही अथवा विश्व व्यापी, विश्व भर में फैले हुए विष को उन्होंने सबसे पहले करतली कृत्य अपने एक हाथ पर अटवा लिया। यह शक्ति देखी, इसलिए यहां कहा गया महादेव भगवान विश्व भावना भूत भावना। समर्थ है, महादेव है, महेश्वर है। समुद्र के जल को जैसे कोई अपने हथेली में ले ले, वैसे भगवान शिव हाथ में ले लिए विष को। तो इतना दूर में फैला हुआ विष हाथ में कैसे अट गया? इसलिए कि ये भगवान है। एक तो ऋषि ने, अगस्त जी ने समुद्र को पी लिया था, ये कथा है शास्त्रों में। अगस्त मुनि एक बार संपूर्ण सागर के जल को पी गए थे, तो भगवान शिव के लिए सागर के समान विशाल स्टॉक विष को हथेली पर रख लेना कौन आश्चर्य की बात। ऐसे उन्होंने किया और उनके हाथ पर सारा विष आकर के अट गया। और सबके सामने भगवान वहां थे, ब्रह्मा जी थे, इंद्र थे और माता पार्वती और सब देवता देख रहे थे, और उसको उन्होंने पिया, ऐसे पी लिया और कुछ नहीं हुआ। भगवान का क्या हो सकता है? लेकिन वह इतना प्रचंड वीर्य वाला था विष, इतना प्रचंड प्रभाव वाला कि तस्यापि दर्शयामास वीर्यम जल कलमस, अपने प्रभाव को दिखा दिया भगवान शिव पर भी। क्या दिखा दिया? कि भगवान शिव उस विष को पिए तो भीतर नहीं ले गए और बमन नहीं किए, कंठ में पचा लिए। भगवान शिव का शरीर शंख के समान उज्जवल गोरे हैं, तो उनके गोरे शरीर में जो कंठ था उसको उसने काला कर दिया। यहां पचाए तो कंठ नीला हो गया, इसीलिए भगवान शिव का एक नाम है नीलकंठ। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहता तच्च साधुर विभूषण, वह सज्जन शिरोमणि भगवान शिव के लिए गहना हो गया, आभूषण हो गया। भगवान शिव देखने में बहुत अच्छा लगते हैं, उनका कंठ है नीला हो गया है भगवान कृष्ण के शरीर जैसा, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है नील कंठ। और सब जगह प्रशंसा होती है, भगवान शिव जहां जाते हैं तो जो लोग प्रथम बार देखते हैं शिव जी को तो वे विचार करते हैं इनका कंठ नीला हो गया है, एक बार संपूर्ण प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए इन्होंने विष पिया था। तो भगवान शिव जहां जाते हैं उनकी कीर्ति फैलती है, तो उनके लिए कंठ का नीला होना विभूषणम, तच्च साधुर विभूषणम, विशेष भूषणम, बहुत अच्छा लगता है। क्या कोई गहना पहनने से अच्छा लगेगा? कितने लोग सोना चांदी के गहना पहनते हैं, हीरा पहनते हैं, लेकिन वो क्या किए हैं, किसका उपकार किए? कहा गया कि दान, हाथ का गहना दान है, कान का गहना भगवान की कथा है, और वाणी का भूषण है कृष्ण का नाम, आंखों का भूषण है भगवान का श्री विग्रह। ये भूषण लगाना चाहिए। भगवान शिव का भूषण हो गया वो काला होना, उनका कंठ नीला होना। जहां जाते हैं तो उनकी कीर्ति फैलती है, जुग जुग तक यह कीर्ति रहेगी विश्व में। तो कई लोगों के शरीर पर कई प्रकार के चिन्ह होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी में पकड़ा गया हो और उसका हाथ काट लिया गया, तो जहां जाएगा वहां उसकी अपकीर्ति फैलेगी। एक तो अंग भंग हुआ,
और जहां भी जाएगा तहां यही अपकीर्ति गाई जाएगी कि ये चोर था, चोरी में हाथ कट। इन भगवान शिव जहां जाते हैं तो यही चर्चा होती है, कितने दयालु हैं, कितने महान हैं, कि इन्होंने विश्व की रक्षा के लिए विष को पिया था और वही विष अपना प्रभाव इनके कंठ पर दिखाया। वो तो भगवान शिव के लिए आभूषण हो गया, एक प्रकार से वो कंठ जल गया भगवान का। यद्यपि उन पर प्रभाव नहीं हो सकता है, लेकिन वे स्वेच्छा से ही उसको स्वीकार किए, विष को भीतर नहीं जाने दिए और बाहर बमन नहीं किए। इस पर एक भक्त ने उत्प्रेक्षक किया है कि संत पुरुष जो होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वे दूसरे के गुणों को, दूसरे के दोषों को कभी बोलते नहीं है और मन में स्मरण भी नहीं करते हैं। शिव जी के समान वो बीच में ही पचा लेते हैं, दूसरे के अगर दुर्गुण को सुनते हैं, बुराई को सुनते हैं, तो सुनते हैं तो एक तो बमन नहीं करते हैं, सुनते हैं तो कान में ही रख लेते हैं, कहने का अर्थ बमन नहीं करते हैं, उल्टी कय नहीं करते हैं, दूसरे की निंदा करना कय करने के समान, वॉमिट करते हैं, जहां तहां उगलते रहते हैं। संसार ऐसे ही बहुत दुखी है, दूसरे की निंदा करके क्या संसार को सुखी करेंगे, दूसरे का दोष गाते रहते। तो सज्जन वे हैं जो किसी के दोष को बोलते नहीं है, अच्छा मन में भी नहीं रखते हैं, भीतर भी स्मरण भी नहीं करते, भूल जाते हैं। जैसे भगवान शिव विष को न भीतर ले गए न बाहर बमन किए, पचा लिए कंठ में, वैसे ही सज्जन पुरुष दूसरे के दोषों को कान में ही पचा लेते हैं, वाणी में नहीं आने देते और मन में भी नहीं उतरने देते। ये सज्जनता है भगवान शिव के इस विस्पान लीला से कवि इस प्रेरणा को दे रहा है, इस तरह सीखना चाहिए। भगवान शिव के लिए विस्पान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस पर भागवत के वक्ता, मूल वक्ता श्रील सुखदेव गोस्वामी अपना कमेंट दे रहे हैं कि तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जनाः परमाराधनम तर्हि तद्धि पुरुषस्य अखिलात्। साधव जो सज्जन पुरुष होते हैं, सामान्य सज्जन, भगवान शिव की बात तो छोड़ दीजिए, सुखदेव गोस्वामी के कहने का आशय यह है, सामान्य साधु जन भी लोकतापेन तप्यन्ते, लोगों का दुख देख करके दुखी होते हैं, पर दुख दुखी रहते हैं, और दूसरे के दुख से दुखी होना यही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी आराधना है। पुरुषस्य आराधनम तद्धि परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः, भगवान अखिलात्मा है, सबके हृदय में रहते हैं। तो भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी आराधना क्या है कि प्राणियों के दुख से दुखी होना, उनके दुख को दूर करने की चेष्टा करना। अगर दुख दूर नहीं भी कर पाए, केवल उनके दुख से दुखी भी हो जाए तप्यन्ते, तब भी भगवान प्रसन्न हो जाते। कम से कम बेचारा विचार तो कर रहा है कि दूसरे के दुख को दूर करना चाहिए, सामर्थ्य होने पर दुख दूर कर देता है, और नहीं सामर्थ्य हो तो तप्यन्ते लोकताप है ना, लोकताप, लोक का दुख, जनता का दुख, यदि जनता दुखी है और उसके दुख को देख करके कोई व्यथित होता है, कैसे इनका दुख दूर होगा, या होगा, तो भगवान इस विचार से प्रसन्न हो जाते। दुख तो भगवान दूर करेंगे, लेकिन ऐसा विचार, शुभ विचार जिसके मन में आ जाता है तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार का विचार होना, इस प्रकार का शुद्ध भावना होना, यही भगवान की सबसे बड़ी आराधना है। परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः, अखिलात्मा है, सबके हृदय में भगवान, समस्त जीव भगवान के जंगम मंदिर हैं, चलते फिरते मंदिर हैं, जितने भी जीव हैं सब, और उसमें भगवान है, जीव भी है भगवान भी है, तो इसलिए भगवान को अखिल आत्मा कहा गया। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की सभा में भगवान शिव के विष्पान पर अपना मंतव्य दे रहे हैं कि बहुत अच्छा है। प्रायशः शब्द क्यों दे रहे हैं कि साधु जन प्रायः दूसरों के दुख से दुखी रहते हैं। प्रायशः इसलिए कहते हैं कि भगवान शिव भी कभी कभी दुखी नहीं होते हैं दूसरे के दुख से। कब? प्रलय काल में। जब प्रलय काल में सारा विश्व तप्त होता है तो भगवान शिव उस समय नहीं पिघलते हैं, बल्कि और सहयोग देते हैं जलाने में। लेकिन और समय में प्रायशः दुखी रहते हैं। उस समय तो भगवान का आदेश होता है प्रलय करने का, इसलिए प्रलय करते हैं। अतः प्रायः शब्द का प्रयोग किया गया। प्रायः दुखी रहते हैं, कभी कभी कठोर हो जाते हैं, लेकिन प्रायः दुखी होते हैं दूसरे के दुख से। यही भगवान की आराधना। भगवान शिव के इस कर्म को देखकर निशम्य कर्म तत्संभर देव देवस्य मीडुस महादानी, देवताओं के भी देवता भगवान शिव के इस कर्म को देखकर, वहां जितने भी देवता आदि जुटे थे सब भूरी भूरी प्रशंसा किए। जय हो भगवान शिव की, जय हो महाकृपालु की, जय हो चंद्रशेखर की, जय हो। इस तरह से लोग जय जयकार कर रहे थे, बहुत प्रशंसा कर रहे थे। और माता पार्वती ने प्रशंसा किया, दक्षायणी दक्ष की पुत्री सती ने प्रशंसा किया, और ब्रह्मा जी तथा वैकुंठश्च भगवान अजित भूरी भूरी प्रशंसा की, धन्य हैं आप। भगवान यही जस देने के लिए तो विष पीने दिए इनको, तो सब लोग प्रशंसा किए। भगवान शिव की कीर्ति जुग जुग तक इस विश्व में अजर अमर रहेगी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किए, तही न भजसि मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। जब सारे देवता जीव जल रहे थे विष से, उस विष की ज्वाला से जिन्होंने कृपा करके रक्षा किया, ऐसे शिव जी से बढ़कर के कौन दयालु है, क्यों नहीं भजन कर रहे हो उनका। तो ये जुग जुग तक कथा गाई जाएगी कि भगवान ने विश्व के हित के लिए विष पिया था। तो विष के प्रभाव को थोड़ा दिखाने के लिए एक लीला हुई। भगवान शिव पी रहे थे तो जानबूझ करके एक दो बूंद गिरा दिए नीचे, तो उसी विष की बूंदों को कुछ विष लताएं पी ली, और कुत्ते सियार कुछ मच्छर ऐसे कुछ विषैले जीव जंतु उसको पी लिए, उनका विष बढ़ गया। वो नहीं मरे, देवता मर रहे थे उस विष से, लेकिन वो लोग नहीं मरे। ये भगवान की लीला देखिए, उनका बल्कि बल बढ़ गया विषैले जीवों का। तो हलाहल विष ही मच्छर में कुत्ता में सियार में और सब में आ रहा है परंपरा से थोड़ा सा। इसको भगवान शिव ने पिया था। तो जैसा मैं कहा कि जुग जुग तक भगवान के इस करुणा की कथा जगत में गाई जाएगी, ऐसा कौन कर सकता है? किसी मनुष्य में या किसी देवता में शक्ति नहीं है कि वो विष से बचा सके दूसरों को। इस घटना से सबको ये अपने जीवन व्रत लेना चाहिए कि हम भी जहां तक होगा उपकार करेंगे, जहां तक होगा हमारी शक्ति जहां तक अलाउ करेगी हम सबका उपकार करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।